नमस्कार भारत, तारीख 25 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। बांग्लादेश में विमान अपहरण की कोशिश नाकाम, मारा गया संदिग्ध। असम में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 144, सुनवाएंगे एक खास रिपोर्ट।
हम थोड़ा सा पिया था शुक्रवार को, थोड़ा थोड़ा वो अपने सिर घुरा रहा था, इसलिए हम अस्पताल आ गए कल। हमारे बगल से करीब 9 लोग।
जानेंगे बिहार के शेल्टर होम से क्यों भाग रही हैं लड़कियां।
देखिए, ये सिर्फ चूक का मसला नहीं है, इसमें सिंडिकेट, हम शुरू से इस बात को उठाते रहे हैं, जो बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जिस सिंडिकेट को तोड़ने की जरूरत है।
होगी वो साथ की डायरी और अन्य खबरें भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। दक्षिण अमेरिकी देशों के नेताओं ने मानवीय सहायता ठुकराने के वेनेजुएला के राष्ट्रपति के फैसले पर नाराजगी जताई है। इन देशों के नेताओं की आज कोलंबिया में बैठक होने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वेनेजुएला के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अमरीका ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में होने जा रही बैठक में अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी हिस्सा लेंगे, जहां वो बताएंगे कि उनका देश वेनेजुएला पर क्या कार्रवाई कर सकता है। इस बीच बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गोइडो ने विभिन्न देशों से आ रही सहायता सामग्री को रोकने के राष्ट्रपति मादुरो के फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, कल हमने एक ऐसा अपराध होते हुए देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। कोलंबिया के संग्रह केंद्र पर सहायता सामग्री को जानबूझकर जलाया गया, बाद में बची खुची राहत सामग्री को वेनेजुएला के स्वयंसेवकों के हवाले किया गया ताकि वे लोगों की जिंदगियां बचा सकें। वेनेजुएला आज फिर संकट में है। ये थे वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गोइडो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार पर बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और इसलिए वो चीन के खिलाफ आयात करों में और सख्ती करने में कुछ देरी कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि तकनीकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा, कृषि और करेंसी जैसे मुद्दों पर चीन के साथ बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत में प्रगति का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो निकट भविष्य में फ्लोरिडा सम्मेलन में कोई समझौता होने की उम्मीद है। बांग्लादेश में कल एक विमान के अपहरण की नाकाम कोशिश हुई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ढाका से दुबई जा रहे विमान का अपहरण करने वाले संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने मार दिया। चटगांव में आपात लैंडिंग के बाद सुरक्षा बलों ने विमान पर धावा बोला और संदिग्ध को मार दिया। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की BG-147 फ्लाइट में क्रू समेत 148 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित विमान से उतार लिया गया था। क्यूबा में नए संविधान के जनमत संग्रह के लिए लोग भारी तादाद में वोट करने निकले। दशकों से वामपंथी नियंत्रण वाले इस देश में लोगों के लिए ये बेहद अहम मतदान था। जनमत संग्रह के तहत कुछ प्रस्तावों को मंजूर किया जाना है, जिसमें निजी संपत्ति को मान्यता देना, इंटरनेट का अधिक से अधिक इस्तेमाल और निजी उद्योगों को अधिक बढ़ावा दिया जाना शामिल है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगल डियाज कनेल ने राजधानी हवाना में अपना वोट डालने से पहले संवाददाताओं से कहा, मैं समझता हूं कि क्यूबा के नागरिक नया संविधान और लैटिन अमेरिका के साथ साथ वेनेजुएला के लिए भी वोट कर रहे हैं। हम वेनेजुएला का बचाव कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वेनेजुएला और महाद्वीप का सम्मान संकट में है। ये थे क्यूबा के राष्ट्रपति मिगल कनेल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल विशाखापत्तनम में भारत पर 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। 2 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में पारी की आखिरी 2 गेंदों पर मेहमान टीम को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। पैट कमिंस ने उमेश यादव की गेंद पर चौका लगाने के बाद आखिरी गेंद पर 2 रन बनाते हुए मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 126 रन बनाए थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। कल ढाका से दुबई जा रहे विमान बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसको नाकाम कर दिया। क्रू सदस्यों समेत इस विमान में कुल 148 लोग सवार थे। इस विमान की चटगांव में आपात लैंडिंग कराई गई, जहां स्पेशल फोर्सेस के जवानों से मुठभेड़ में संदिग्ध अपहरणकर्ता मारा गया। इस घटना पर अधिक जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी इकबाल अहमद। जी इकबाल, बताएं।
बांग्लादेश में एक विमान हाईजैक करने की नाकाम कोशिश हुई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ढाका से दुबई जा रहे विमान का अपहरण करने वाले संदिग्ध यात्री को बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने मार दिया है। चटगांव में आपात लैंडिंग के बाद सुरक्षा बलों ने विमान पर पहले तो धावा बोल दिया और संदिग्ध को मार दिया। संदिग्ध अपहरणकर्ता का कहना था कि उसके पास पिस्तौल है। बांग्लादेश एयरलाइंस की BG-147 फ्लाइट में क्रू समेत कुल 148 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित विमान से उतार दिया गया है। माफ़ करिएगा, ये विमान ढाका से चटगांव होते हुए दुबई जाने वाला था और स्थानीय समयानुसार विमान शाम 5:40 पर चटगांव हवाई अड्डे पर उतरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि चटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ही विमान वापस लौट आया। जैसे ही विमान उतरा, बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सभी यात्रियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार सैन्य अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध की उम्र तकरीबन 25 साल थी और थोड़ी देर की फायरिंग के बाद ही उसे मृत पाया गया। मेजर जनरल मुतीउर रहमान ने पत्रकारों से कहा कि सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार करने या सरेंडर कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और फिर कमांडो ने उसे गोली मार दी।
जी इकबाल, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्या कारण है अब तक?
अभी कुछ पता तो नहीं चल पाया है कि क्या कारण था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन शेख हसीना उस समय तटीय शहर चटगांव में थी।
और ये कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि वो मानसिक
हाँ, लेकिन अभी कोई इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई,
पुष्टि नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए इकबाल अहमद। बढ़ते हैं आगे, जहां असम के गोलाघाट और जोरहाट जिले के चाय बागानों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 144 से अधिक हो गई है। बीते 4 दिनों से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन के पास अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि शराब में किस तरह का जहरीला मिश्रण मिलाया गया था। बरामद शराब के नमूने की अभी तक फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है। सुनिए दिलीप कुमार शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
असम सरकार के चाय जनजाति कल्याण विभाग ने बीते शुक्रवार को कच्चा सोना नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने इस कार्यक्रम को लेकर शहरों में जो पोस्टर लगवाए थे, उनमें सरकार का प्रमुख उद्देश्य असम में सालों से बसे चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी लोगों की कला और संस्कृति को संरक्षण करने की बात लिखी गई थी। कच्चा सोना मतलब चाय की पत्तियां। बदकिस्मती से इस कार्यक्रम का आयोजन जिस दिन डिब्रूगढ़ में चल रहा था, उसी दिन गोलाघाट और जोरहाट के चाय बागानों में जहरीली शराब पीकर एक के बाद एक आदिवासी लोग दम तोड़ रहे थे। चाय बागानों में इन आदिवासी लोगों के मरने की खबर वैसे तो गुरुवार शाम से ही फैल गई थी, लेकिन कच्चा सोना सांस्कृतिक कार्यक्रम उसके दूसरे और तीसरे दिन तक भी चलता रहा। रविवार की शाम होते होते जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 144 से अधिक पहुंच गई। अखिल असम आदिवासी छात्र संघ के प्रचार सचिव मोहेश खटवार ने BBC से कहा,
उसने वो कच्चा सोना बोल के जो फेस्टिवल का नाम दिया हुआ है, वहाँ पे वो लोग दिखा रहे हैं कि हम लोगों का जो कल्चर है, जो भाषा है, वो बचा रहा है। लेकिन एक्चुअली ये कल्चर बचाने वाला नहीं है, हम लोग कल्चर को खत्म करने का लिए प्रोसेस शुरू किया है। लोग
असम में 1860-1890 के दशक के दौरान कई चरणों में चाय बागानों में मजदूरों के रूप में काम करने के लिए झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से इन आदिवासी लोगों को यहाँ लाकर बसाया गया था, लेकिन इतने सालों बाद भी इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। आदिवासी छात्र नेता मेलकस टोपो कहते हैं,
कांग्रेस सरकार था असम में उस समय, सैटरडे एंड संडे इट वाज ड्राई डे। उसका बाद में जैसा बीजेपी सरकार आया, वो आने के बाद में ड्राई डे को उठा दिया। अभी कोई ड्राई डे नहीं है असम में, जितना सके पी सकेगा पिए।
मेलकस गोलाघाट जिला सरकारी अस्पताल के बाहर जहां खड़े होकर ये बातें कह रहे थे, वहां जहरीली शराब के कारण बीमार पड़े लोगों के रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। आधे से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल के गलियारे के फर्श पर ही चल रहा था। जहरीली शराब पीने के बावजूद अस्पताल में इलाज के बाद ठीक हो चुके 42 साल के गिरिमिया सिंघो खुद को काफी भाग्यशाली मानते हैं।
हम थोड़ा सा पिया था शुक्रवार को, थोड़ा थोड़ा अपने सिर घुरा रहा था, इसलिए हम अस्पताल आ गए। कल हमारे बगल से करीब 9 लोग इधर, तो हमारे पीने के तो आदत नहीं है, लेकिन संग साथी में उस दिन क्या हुआ मेरा तकदीर खराब।
गोलाघाट सरकारी अस्पताल में जहरीली शराब पीकर बीमार पड़े लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर दीपक दत्ता कहते हैं,
मतलब ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, किसी को सांस लेने का तकलीफ हो रहा है तो सांस लेने का वो सब चल रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, इंजेक्शन कुछ है वो सब दे रहा है, ठीक है। और बाकी अल्कोहल रिलेटेड कुछ कोई कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो सब दे रहा है। एंटीडोट एक है फोमेपिजोल जिसका नाम है, तो वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी।
जहरीली शराब कांड में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसके साथ ही बाजार में बिक रहे लाल गुड़ पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। रविवार को दिन भर सरकारी अस्पतालों में मंत्रियों प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहा, लेकिन लगातार हो रही मौतों से मातम भी छाया हुआ था। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गोलाघाट।
कल भारत प्रशासित कश्मीर के कुलगाम में हुए एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते के एक डिप्टी SP की मौत हो गई, जबकि एक मेजर घायल हो गए। इस मुठभेड़ में 3 चरमपंथी भी मारे गए। कश्मीर में सैन्य बलों को इतना नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जी देखें, जब 14 फरवरी को वो सुसाइड अटैक हुआ था, तो उसके बाद पूरे कश्मीर में, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सतर्क थी फोर्सेस। लेकिन उसके बाद 3 दिन बाद ही एक और अटैक हुआ जैश मोहम्मद की तरफ से, जिसमें फोर्सेस को जानी नुकसान उठाना पड़ा। तो कल जो अटैक हुआ है उसमें जो पुलिस की काउंटर इंसर्जेंसी विंग है, जिसे टास्क फोर्स कहते हैं, उसके एक बहुत ही मंझे हुए DSP अमन कुमार ठाकुर जो है उनके सर में गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। और एक मेजर हैं आर्मी के, मेजर रैंक के ऑफिसर, उनको भी गोली लगी, हालांकि वो इस वक्त स्टेबल हैं, लेकिन वो भी इंजर्ड हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही गंभीर स्थिति है दक्षिणी कश्मीर में। ऐसा लगता है कि हालांकि सेना ने तो जो 14 फरवरी का अटैक था उसके बाद ऑपरेशंस को तेज कर दिया था, लेकिन एक मतलब डर सा फैला हुआ है पूरे कश्मीर में कि ये जो झड़पें हो रही हैं फरवरी 14 के अटैक के बाद भी, तो इससे पूरा कश्मीर जो है भयभीत हो गया है।
अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि एक DSP की भी मौत हुई है, एक अन्य मेजर घायल हैं, इससे पहले हमले में जो चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ थी उसमें भी भारी नुकसान हुआ था सैन्य बलों को, तो 14 फरवरी के हमले के बाद से काफी सतर्क होंगे सुरक्षा बल, उसके बावजूद उन्हें इतना भारी नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है, क्या वजह आपको लगती है?
जी देखें, मल्टी डायमेंशनल फोकस है आर्म्ड फोर्सेस का कश्मीर में। एक तो ये है कि जैसा कि मीडिया में बहुत उछाला गया कि जवाब देना है, हमला करना है, तो सारा फोकस जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे चला गया, पूरी फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लेकिन जैसा कि हमें सुरक्षा बलों के अधिकारियों या पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जो 14 फरवरी का हमला था, जिसमें सुरक्षा बलों को बहुत भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, कोई 49 CRPF के जो कर्मचारी हैं वो मारे गए, तो उसके बाद चरमपंथी का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो अब ऑफेंसिव मोड में है। और हालांकि ये एक आश्चर्य की बात है कि जो 14 फरवरी को हमला हुआ था उसके बाद पूरे देश में एक सतर्कता थी और आर्म फोर्सेस बहुत सतर्क थे, और ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी पॉलिसी को जो है रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद काफी ज्यादा तलाशी कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन ये अटैक्स हो रहे हैं, हालांकि ये अटैक ऐसा नहीं था कि कहीं पे सुरक्षा बल मौजूद थे और चरमपंथियों ने अटैक किया, ये सुरक्षा बलों को ही एक टिप मिली थी, एक खुफिया सूचना मिली थी। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम तारीगाम है, वहां पे एक मकान में जो चरमपंथी छुपे हैं, तो घेरा किया गया, तो यहाँ पे जो ये सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां होती हैं ये एक सिनर्जी के तहत होती है, यानी जिसमें आर्मी भी होती है, सीआरपीएफ भी होती है, पुलिस भी होती है, तो उसका घेरा किया गया। तो उसके बाद जिस मकान में वो चरमपति छुपे थे, ऐसा हमें पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वहां से उन्होंने फायरिंग की और इनिशियल अटैक में वो डीएसपी मारे गए, लेकिन उसके बाद जो है 3 चरमपति मारे गए।
कश्मीर के ताजा हालात की जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोरखपुर में 75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। इस योजना के तहत एक साल के भीतर किसानों के खाते में 3 किश्तों में 6,000 रुपए भेजे जाएंगे। कल 1 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किश्त भी भेजी गई, लेकिन क्या ये रकम काफी है? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने यही पूछा किसान अधिकारों के लिए काम करने वाले रमनदीप सिंह मान से।
अभी एक इंस्टॉलमेंट आई है ना 2000 की, ये जो भी इंस्टॉलमेंट आई है ये सारों को तो आई नहीं, 12 करोड़ को, है ना। तो इसमें वो जो अलग अलग जो ऑपोजिशन की स्टेट्स है ना, उन्होंने तो इनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी अभी तक। तो आज का ही था कि इन्होंने 1 करोड़ फार्मर्स को दिया है ना। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाएगा मार्च का जो वीक है ना, पहला वीक, तो उसके बाद आज ये जो इलेक्शन कमिश्नर थे, 3 जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बोला कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो सिर्फ उन्हीं फार्मर्स के अकाउंट में ये पैसा की एंट्री होगी जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। अभी तक इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 3.5 करोड़, और उसमें से भी कुछ राउंड अबाउट 31% ऐसे हैं जो इन्होंने कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनके आधार की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनके साथ नहीं हो रही थी टाली। कि ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ही इन्होंने, कि जब भी इलेक्शन के लिए ये जाएंगे, इलेक्शन की जो होती हैं रैलियां होती हैं उसमें ये बोलेंगे कि जी हमने आपको इतने फार्मर्स के लिए हम ये स्कीम लेके आए हैं, जबकि जो एलोकेशन है वो भी नहीं है पूरा। लास्ट ईयर का इन्होंने जो बजट है उसमें से इन्होंने 20,000 करोड़ की एलोकेशन हुई है, और ये जो इंटरिम बजट है जिसमें इन्होंने 75,000 करोड़ का बोला है, वो तो जब अगली सरकार आएगी, अगर इनकी आती है, तो फिर ये एक और लेके आएंगे, बजट लेके आएंगे, फिर उसमें फाइनेंस का जो होता है बिल वो होगा पास, और उसके बाद ये मतलब ऑपरेशनल होगी पूरी। तो जो अभी ये वाली बात है कि 12 करोड़ फार्मर्स को 6,000 रुपीज की एक इंस्टॉलमेंट अभी दे दी, और एक इंस्टॉलमेंट इलेक्शन से पहले भी आएगी, तो ये तो 100% ही फॉल्स है। और दूसरा, अगर आप ये पूछना चाहते हो कि इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से तो फायदा तो इतना नहीं होगा, क्योंकि आशा तो ये थी, लाइक एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग, कि जैसे वो साउथ के जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना का है, वो पहले 8,000 रुपए साल का हर एकड़ पे दे रहे थे, और इस बार उसने इंक्रीज कर दिया है, 8 से कर दिया है वो उन्होंने 10,000 रुपीज। तो एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि हर एकड़ पे कुछ मतलब इतनी हेल्प होगी। अब ये हर एकड़ पे अगर 5 एकड़ वाले को 6,000 रुपीज की हो रही है हेल्प, वो एक महीने का आता है रुपया 500, तो 500 में तो अगर आप देखोगे तो यूरिया का जो एक है कट्टा वो आएंगे 2, है ना, तो उसमें से तो क्या हेल्प हो जाएगी।
लेकिन सर, जिस किसान के पास कुछ नहीं आ रहा था, क्या उसके लिए 500 रुपए महीना भी बहुत नहीं है? क्योंकि जब 2,000 रुपए किसानों ने अपने खाते में देखे, तो मैंने कई से बात की है, उन्होंने खुशी जाहिर की कि कुछ तो आया।
देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर तो इस हिसाब से आप देखोगे तो अगर 100 रुपीज भी आता है तो अच्छी बात है, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, कि जो इन्होंने जो ये जो स्कीम लेके आए हैं, अच्छी सोच है, कि इसमें बस ये प्लस पॉइंट है कि एक बार इन्होंने स्टार्ट तो किया ना। अभी अगर ये एक साल का 6,000 रुपीज बोल रहे हैं, तो आगे अब ये ओपन हो गया रास्ता कि ये 6 के 8 भी हो सकते हैं, 8 के 9 भी हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत, अधिक जानकारी दे रहे थे रमनदीप सिंह मान। रुख करते हैं बिहार का, जहां मोकामा स्थित एक शेल्टर होम से शुक्रवार की रात 7 लड़कियां लापता हो गईं। इनमें से 4 लड़कियां मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की गवाह थीं। हालांकि घटना के अगले दिन ही पुलिस ने कथित रूप से उनमें से 6 लड़कियों को दरभंगा में बरामद भी कर लिया, जबकि 1 लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इससे पहले भी पटना और मधुबनी के शेल्टर होम से लड़कियां गायब हो चुकी हैं। सुनिए नीरज प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट।
बंद कमरों में गूंजती आवाजें उन बच्चियों की है, जिन्हें मोकामा के नाजरत हॉस्पिटल में चल रहे गर्ल शेल्टर होम में रखा गया है। यहीं से 7 लड़कियां 22 फरवरी की रात लापता हो गई थीं। रविवार को दोपहर के 2:30 बज चुके थे। शेल्टर होम के मुख्य दरवाजे के सामने कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे जिन्हें घटना के बाद पटना से भेजा गया था, लेकिन उनकी शिकायत थी कि अस्पताल प्रबंधन अंदर जाने नहीं दे रहा है, यह कहकर कि शेल्टर होम में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। यहां तक कि बार की एडिशनल एसपी लिपि सिंह को भी एक बार अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पटना के आईजी सुनील कुमार पहुंचे तो जांच के लिए प्रबंधन को दरवाजा खोलना पड़ा। आईजी सुनील कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 2 घंटे तक न सिर्फ शेल्टर होम बल्कि हॉस्पिटल कैंपस के चप्पे चप्पे का मुआयना किया। बाहर निकलकर उन्होंने बीबीसी से बात की।
घटना घटित हुई थी जिसको मोकामा थाने में प्रतिवेदित किया गया था। 7 बच्चियों के यहाँ से नाजरत हॉस्पिटल स्थित जो बाल गृह है वहाँ से, उसमें से 6 बच्चियाँ जो हैं वो बरामद हो गई हैं।
रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद वहाँ की 16 लड़कियों को बेहतर देखभाल और सुरक्षा के लिए मोकामा भेजा गया था। मधुबनी की घटना होने के बाद वहाँ की 9 लड़कियों को भी मोकामा ही शिफ्ट किया गया। रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि मोकामा का यह शेल्टर होम बिहार सरकार के दावे के मुताबिक सबसे बेहतर ढंग से संचालित होता है, लेकिन फिर भी शेल्टर होम से लड़कियाँ कैसे गायब हो गईं? क्या यह प्रबंधन की लापरवाही और सिस्टम का नकारापन नहीं दिखाता है? मुजफ्फरपुर मामले में हाईकोर्ट में दायर रिट के याचिकाकर्ता संतोष कुमार कहते हैं,
देखिए ये सिर्फ चूक का मसला नहीं है, इसमें सिंडिकेट, हम शुरू से इस बात को उठाते रहे हैं, जो बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिस सिंडिकेट को तोड़ने की जरूरत है। अब ये देखिए, ये जो बच्चियां जो भागी हैं मोकामा से, 7 जिसमें से 4 मुजफ्फरपुर की हैं, वो पीड़िता भी हैं और गवाह भी हैं। यदि गवाही गायब होते रहे तो फिर गवाही कौन देगा, और जब गवाही कौन देगा तो गुनहगार कोई नहीं होगा, और गुनहगार है तो गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी। और जब आप ब्रजेश ठाकुर है तमाम तरह के लोग जो जेल में है उसको गुनहगार को सजा नहीं दिला पाएंगे तो फिर सिंडिकेट को तोड़ने की तो बात बहुत दूर की रही। और ये हालात तब है जब इसमें सुप्रीम कोर्ट इसको कंटिन्यूस इसको देख रहा है।
चाहे पटना हो, मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर हो, या फिर जिस भी जिले के शेल्टर होम से लड़कियां लापता हुई हैं, पुलिस और प्रशासन हर बार यही जवाब देता है कि लड़कियां खुद से भागी हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि शेल्टर होम से लड़कियां क्यों भाग रही हैं, और उसमें भी वो लड़कियां क्यों भाग रही हैं जिन्हें विशेष केयर की जरूरत है। नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी मोकामा।
अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश उप्रेती।
जी शाहिद, इंडियन एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने अनुच्छेद 35 और कश्मीर में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती को अपनी सुर्खी बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 35A पर सुनवाई को फिलहाल टालने की अपील की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 35A पर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस और सज्जाद लोन के बयान को पहले पन्ने पर छापा है। तीनों ने कहा है कि 35A को खत्म करना भयानक होगा। निर्माणाधीन घरों पर GST घटाने की खबर भी कई अखबारों में है। अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर GST की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया गया है।
दिनेश जी, आप आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार हैं हमारे बीबीसी में, अब आप बताइए कि GST घटाया गया है तो इससे क्या फ़ायदा होगा?
जी निश्चित रूप से जो नए घर लेने वाले हैं उनके लिए ये राहत की खबर है, और क्योंकि चुनावी माहौल है इस तरह से, कल जो रविवार को बैठक हुई वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, तो एक एक सौगात कही जा सकती है।
तो ये इससे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा अगर कोई घर खरीदना चाह रहा है, जैसे मैं खरीदना चाह रहा हूँ तो?
जी 12% से लेके घटा के 5% कर दी गई है, मतलब 7% का अगर कटौती की गई है तो एक अच्छा खासा। और आप जानते हैं कि दिल्ली और NCR और दूसरे बड़े नगरों में मकानों की कीमतें जो हैं वो लाखों में हैं।
जी
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ में 3 चरमपंथियों और 1 DSP की मौत की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। मारे गए तीनों चरमपंथी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं।
इसके अलावा दिनेश जी, नवभारत टाइम्स में और बाकी अखबारों की एक सुर्खी है कि नेशनल वॉर मेमोरियल की आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये हर अखबार के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स ने हेडिंग बनाई है उनकी याद में जो लौट के घर ना आए। उसके अलावा
कई अखबारों में ये तस्वीरों के साथ प्रकाशित की गई और कहा गया है कि 60 साल के बाद ये इंडिया गेट के पास तैयार हुआ है।
बिल्कुल
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अरुणाचल में 6 समुदायों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जाने की सिफारिश के बाद राज्य में कई जगह हिंसा की खबरें हैं और लोगों ने उप मुख्यमंत्री के घर को भी आग लगा दी है।
जी, उसके बाद कहा जा रहा है कि फैसला वापस भी लिया जा सकता है। अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। श्रोताओं, अब समय है पाकिस्तान से वसातुल्ला खां की डायरी का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है।
पिताजी बताते हैं कि विभाजन के ज़माने में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी नहीं आई थी और रेडियो बिजली से ही चलता था। एक आदमी जब विभाजन के बाद लुटपिट के पाकिस्तान पहुंचा तो हर वक्त ऑल इंडिया रेडियो सुनता रहता। किसी ने पूछा, भैया रेडियो पाकिस्तान भी कभी सुन लिया करो। कहने लगा, ऑल इंडिया रेडियो सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, कम अज़ कम दुश्मन की बिजली तो खर्च हो रही है। ये बात यूँ याद आई जब भारत में क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत बहुत से लोगों की तरफ से ये मांग होने लगी कि इंग्लैंड में होने वाले विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से कोई मैच ना खेले, भले पाकिस्तान को भारतीय बाइकॉट के बदले 2 पॉइंट्स ही क्यों ना मिल जाएं। मगर सुनील गावस्कर ने कहा कि पुलवामा की खूनी घटना का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन इस गुस्से के बदले बिना मुकाबला किए क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को मुफ्त के 2 पॉइंट्स थमा देने से आखिर इंडिया को क्या मिलेगा। फिर खबर आई कि कश्मीरी छात्रों और परिवारों को कई राज्यों में हमलों, धमकियों और खौफ का सामना है। फिर ये सूचना मिली कि बेंगलुरु में 53 वर्ष से कायम कराची बेकरी का कुछ जोशीले युवाओं ने घेराव किया ताकि कराची बेकरी में से कराची का शब्द हटा दिया जाए, वरना बेकरी बंद कर दी जाए। कराची से आकर बेंगलुरु में आबाद होने वाले खान चंद्रमनानी ने गुस्से में भरी मंडली को बताया कि वो खुद 1947 में सिंध छोड़ के भारत में बसे और उन्होंने अपनी बेकरी का नाम कराची बेकरी किसी पाकिस्तानी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि से जुड़ी यादों को ज़िंदा रखने के लिए रखा है। अगर ये कोई गलत बात है तो 60 वर्ष तक किसी ने उन्हें क्यों नहीं बताया। गुस्सा ऐसे भी उतारा जा सकता है, ये तो हमने सोचा नहीं था। मगर अब हम सोच रहे हैं कि जब कभी इस्लामाबाद जाएं तो जोश मली आबादी की कब्र पे कालक पोत दें, क्योंकि मली आबाद तो हिंदुस्तान में है। फिराक गोरखपुरी, असगर गोंडवी, अकबर इलाहाबादी और गौस मथरावी की शायरी कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से निकाल फेंकें, क्योंकि ये सारी जगह तो भारत में हैं और भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान के हैदराबाद में विभाजन से भी पहले की बम्बई बेकरी मौजूद है और उसका मालिक एक पाकिस्तानी हिंदू है। क्या मैं उसे कहूं कि पाकिस्तान में रहना है तो बम्बई बेकरी का नाम मक्का या मदीना बेकरी रखे या कम से कम कराची बेकरी रख ले? क्या कल से मैं दिल्ली कबाब हाउस और बुंदू खान मेरठ वाले को भारतीय एजेंट समझ के उनके शीशे तोड़ दूँ? क्या मुझे पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत जताने के लिए भारत से नफरत करना ज़रूरी है? अगर बेंगलुरु की कराची बेकरी इसलिए सुरक्षित नहीं कि कराची पाकिस्तान में है, तो फिर मोहनजोदड़ो से मिलने वाली डांसिंग गर्ल भी पाकिस्तान लौटा दें, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है और जन गण मन अधिनायक जय में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में से सिंध निकाल के उड़ीसा डाल दें और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी फाड़ के फेंक दें, क्योंकि ये इकबाल ने लिखा था और इकबाल अब पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि है। बंदर की बला तवेले के सर, गिरा गधी पर से और गुस्सा को मार पे, ये हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर यही कुछ करते भी तो आ रहे हैं। इसीलिए तो हम दक्षिण एशियाई यहींच खड़े हैं और दुनिया आगे बढ़ के कहीं से कहींच पहुंच गई है।
वसातुल्ला खां की डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। दक्षिण अमरीकी देशों के नेताओं ने मानवीय सहायता ठुकराने के वेनेजुएला के राष्ट्रपति के फैसले पर नाराजगी जताई है। इन देशों के नेताओं की आज कोलंबिया में बैठक होने जा रही है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार पर बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और इसीलिए वो चीन के खिलाफ आयात करों में और सख्ती करने में कुछ देरी कर रहे हैं। बांग्लादेश में कल एक विमान के अपहरण की नाकाम कोशिश हुई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ढाका से दुबई जा रहे विमान का अपहरण करने वाले संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने मार दिया है। क्यूबा में नए संविधान के जनमत संग्रह के लिए लोग भारी तादाद में वोट करने निकले। दशकों से वामपंथी नियंत्रण वाले इस देश में लोगों के लिए ये बेहद अहम मतदान था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।